नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन कल शाम संपन्न हो गया। एकजुटता, समानता और स्थिरता विषय पर दो दिन का ये शिखर सम्मेलन 22 नवंबर को शुरू हुआ था। शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी को वित्त केंद्रित के बजाय मानव केंद्रित, राष्ट्रीय के बजाय वैश्विक और विशिष्ट मॉडलों के बजाय ओपन सोर्स पर आधारित होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सतत विकास, विश्वसनीय व्यापार, निष्पक्ष वित्त और सभी के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने वाली प्रगति के महत्व पर बल दिया। उन्होंने शिखर सम्मेलन से इतर कई द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, नवाचार, AI, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर सार्थक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मेलोनी ने दिल्ली में हुए आतंकी हमले पर भारत के प्रति एकजुटता व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने की इटली की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आने वाले महीनों में द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इब्सा केवल तीन देशों का समूह नहीं है, बल्कि तीन महाद्वीपों, तीन प्रमुख लोकतंत्रों और तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि तीनों देश सतत विकास के लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहानिसबर्ग की सफल यात्रा पूरी करके भारत के लिए रवाना हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाएंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भूषण आर गवई के उत्तराधिकारी होंगे। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मुख्य न्यायाधीश गवई की अनुशंसा पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत को अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में माहे श्रेणी के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान का जलावतरण करेगी। इस समारोह की अध्यक्षता थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि माहे का जलावतरण स्वदेशी उथले पानी के लड़ाकू विमानों की एक नई पीढ़ी के आगमन का प्रतीक होगा। सरकार द्वारा पुराने और जटिल श्रम कानूनों के स्थान पर चार सरल और व्यापक लेबर कोड लागू करने के फैसले को देश भर के श्रमिक समुदाय को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। तेलंगाना गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन के संस्थापक और राज्य अध्यक्ष शेख सलाहुद्दीन ने कहा कि इस क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की उनकी मांग अब पूरी होगी।
स्टेट प्रेसिडेंट, तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन, आज आप सबको पता है सारे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को राइड हेलिंग, ओला, उबर, रैपिडो, डिलीवरी, स्विगी, जोमैटो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जो ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ अर्बन कंपनी के वर्कर्स, स्पा, ब्यूटिशियन और प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और जितने भी ऐप बेस्ड वर्कर्स है, अब तमाम लोगों के लिए गुड न्यूज है। इमीडिएटली जो है हमारे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है वो हमें मिलेंगे।
राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब विधानसभा का 10वां सत्र आज आनंदपुर साहिब में आयोजित किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत राज्यपाल ने विधानसभा को रूपनगर स्थित श्री आनंद साहिब के भाई जैताजी मेमोरियल में बैठक के लिए बुलाया है। मणिपुर राज्य फिल्म विकास सोसाइटी आज से शुक्रवार तक पैलेस ऑडिटोरियम में 7वां संगाई फिल्म फेस्टिवल आयोजित करेगी। फिल्म प्रेमियों के लिए 5 दिनों तक निःशुल्क स्क्रीनिंग और इंटरैक्टिव सेशन आयोजित किए जाएंगे। समारोह का उद्घाटन सुबह 10:30 होगा। कोलंबो में भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर पहला दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। नेपाल के 115 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 13वें ओवर में 3 विकेट पर 117 रन बनाकर शानदार जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।